हे राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय सुदन जय ब्रज जन जय सुदन जय ब्रज जन जय यमुना तीरा बन जा जय जय यमुना तीरा बन जा जय राधव जय कुंज राधा जय राधा माधव जय कुंज नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भिवाइन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादा प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय श्री श्री गौर निताई की जय समवेत भक्त वृंद की जय कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सुप्रीम ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू सुप्रीम ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू सुप्रीम ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु भेन गौरांबा। इस माइक में आवाज बीच में चली गई थी फिर आ गई है। अच्छा लाइट गई थी। अच्छा ऐसा है। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 25 मेरे विषय बोलिए सवासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतं आलिंग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम प्रच्छन् भगवत् प्रजाना सवासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतं आलिंग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम प्रच्छन् भगवत् प्रजाना शब्दार्थ बोलिए सह वह विदुर वासुदेव कृष्ण का अनुचरम नित्य संगी प्रशांतम अत्यंत शाम एवं सौम्य बृहस्पति देवताओं के विद्वान गुरु बृहस्पति का प्राप्त पूर्व काल में तनयम पुत्र या शिष्य प्रतीतम स्वीकार किया आलिंग आलिंगन करके गाढ़ं गहराई से प्रणयेन प्रेम में भद्रम शुभ स्वाना निजी अपेक्षत पूछा भगवत भगवान के प्रजानाम परिवार का अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो इस श्लोक को हम समझेंगे फिर से, क्या शब्द है श्लोक के। सा, सा का अर्थ है वह, तो ये किसके लिए है? विदुर जी के लिए। तो पहले पिछले श्लोक में ही वर्णन चल रहा है विदुर जी का, तो सा का मतलब वो विदुर जी। वासुदेव अनुचरम, वासुदेव अनुचरम, वासुदेव, वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र यानी भगवान कृष्ण के अनुचर। अनुचर का मतलब है जो पीछे पीछे विचरण करें। अनुचर, अनु का मतलब पीछे पीछे और चर का मतलब चलने वाला। तो उद्धव जी की कैसे हैं? कृष्ण के अनुचर हैं। जहाँ कृष्ण जाएं वहाँ उद्धव जी जाएं, या जहाँ कृष्ण आदेश देते हैं वहाँ उद्धव जी जाते हैं। अनुचर है ना, वासुदेव अनुचरम प्रशांतम। तो भगवान का अनुचर है तो कैसा होगा? प्रशांत होगा, है ना। तो प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत। तो कोई शांत होता है और कोई प्रशांत होता है, तो प्रशांत और ज़्यादा गहरा शब्द है शांत से प्रशांत। प्रकृष्ट रूपेण शांत, बहुत शांत, है ना। कोई व्यक्ति अशांत होता है, कुछ अन्याय होता है, कुछ अव्यवस्था होती है, कई कारण होते हैं अशांति के, तो लोग अशांत हैं, भौतिक संसार में अशांत हैं। लेकिन उद्धव जी क्या हैं? प्रशांत हैं, जो भगवान के अनुसार हैं, क्योंकि भगवान के अनुसार हैं तो भगवान की व्यवस्था को, प्रत्येक चीज़ में भगवान की व्यवस्था या भगवान का हाथ देखते हैं, कि भगवान कारण है, इसलिए प्रशांत। वासुदेवं चरम प्रशांतम। फिर बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम। बृहस्पति का मतलब बृहस्पति के, प्राक का मतलब प्राचीन काल में, तनयम प्रतीतम, तनयम का मतलब पुत्र और प्रतीतम माने जो स्वीकार किए गए माने गए, है ना। तो शिष्य को भी जो है पुत्र माना जाता है, तो बृहस्पति के माने हुए पुत्र, इसका मतलब शिष्य। बृहस्पति ने अगर किसी को अपना पुत्र माना है तो शिक्षा देता है। बृहस्पति ने शिक्षा दिया है अपने पुत्र, अपना पुत्र मान करके, है ना। तो वो शिष्य को ही तनयम प्रतीतम कहा गया है। बृहस्पति प्राक तनयम प्रतीतम। आलिंग गाढ़म, गाढ़ आलिंगन करके प्रणयेन, प्रणय के कारण यानी प्रेम के कारण गाढ़ आलिंगन करके भद्रम। भद्रम शब्द उद्धव जी के लिए है, उद्धव जी के लिए भद्रम शब्द है। जितने भी शब्द हैं जिसमें हल्ला ये होता है ना, माँ अंत में है, प्रशांतम, वासुदेवानुचरम, प्रशांतम, बृहस्पति प्राक्तनियम, फिर भद्रम। तो भद्र, हरि बोल, भद्र का मतलब है बार बार लाइट जाती है, हरि बोल। तो बार बार जो है मैं कह रहा था भद्रम, भद्र का अर्थ है कि जो सज्जन है। भद्र, भद्र और अभद्र ये दो शब्द होते हैं, तो अभद्र का अर्थ है दुर्जन और भद्र का अर्थ है सज्जन। तो उद्धव जी जो है वासुदेव के अनुचर हैं, प्रशांत हैं और बृहस्पति के माने हुए पुत्र हैं और भद्र हैं। स्वानाम प्रच्छद भगवत प्रजानाम। तो विदुर जी ने अपने परिवार के बारे में पूछा, भगवान के परिवार के बारे में पूछा। स्वानाम अपृच्छत भगवत प्रजानाम, विदुर जी का परिवार और भगवान का परिवार, है ना। तो इस विषय में विदुर जी ने समाचार पूछा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतः जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया, क्योंकि उद्धव छोटे थे अतएव पुत्र तुल्य थे। तो यहाँ प्रभुपाद शिष्टाचार बता रहे हैं कि उद्धव जी पुत्र के समान हैं विदुर जी के, क्योंकि विदुर जी पांडु और धृतराष्ट्र के भाई हैं। विदुर जी पांडु और धृतराष्ट्र के भाई हैं, है ना। और ये पांडु और धृतराष्ट्र ये पांडवों के पिता हैं, पांडवों के पिता जैसे हैं, है ना। और कृष्ण और पांच पांडव बराबर धरातल के हैं उसी पीढ़ी में, है ना। और उद्धव जी भी कृष्ण के ही बराबर की पीढ़ी के हैं, उनके चचेरे भाई हैं। तो इस प्रकार से विदुर जी पिता के समान हुए, ऊपर की पीढ़ी के हैं विदुर जी। विदुर, धृतराष्ट्र, पांडव ये सब ऊपर की पीढ़ी के हैं, है? और उनके नीचे की पीढ़ी के पांडव हैं, उद्धव हैं, कृष्ण हैं, ये सब नीचे की पीढ़ी के हैं। तो विदुर जी पिता के समान हैं। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया, ये शिष्टाचार है। अपने से बड़े हैं कोई, अपने पिता के जैसे हैं तो देखते ही सिर झुकाना है, सिर झुकाना है। लेकिन जो विदुर जी हैं तो वे उद्धव का आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगन अपने बराबर के व्यक्ति का किया जाता है, लेकिन जो बड़ा है अपने छोटे का भी आलिंगन कर सकता है, लेकिन छोटा अपने बड़े का आलिंगन नहीं कर सकता, है ना। तो उद्धव जी विदुर जी का आलिंगन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विदुर जी उद्धव का आलिंगन कर सकते हैं। तो बड़े को अधिकार होता है कि अपने छोटे को भी अपने बराबर सम्मान दे। तो विदुर जी जो है उद्धव जी को अपने बराबर सम्मान देते हैं आलिंगन करके, है ना। लेकिन उद्धव जी विदुर जी का आलिंगन नहीं कर सकते हैं, वो पिता के समान है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतः जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया। सबसे पहले छोटे का कर्तव्य होता है अपने बड़े को सिर झुकाए, सम्मान दे। फिर जो बड़ा होता है अगर उसकी इच्छा हो तो छोटे का आलिंगन कर सकता है। और यहाँ आलिंगन क्यों किया विदुर जी ने उद्धव जी का, क्योंकि बहुत गुण है उद्धव जी, बहुत गुण है। पहला गुण क्या है, वासुदेव अनुचरम, कृष्ण के अनुचर, है ना। और विदुर जी कृष्ण के महाभागवत प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी हैं कृष्ण के, है ना। तो कृष्ण के अनुचर को जो है वो कैसे आलिंगन नहीं करेंगे, है ना। फिर दूसरा गुण क्या है, प्रशांत हैं, बहुत प्रशांत हैं, उनकी कोई मांग नहीं होती है। प्रशांत जो व्यक्ति होता है उसकी कुछ मांगे नहीं होती कि मेरी मांगे पूरी करो, उन्हें तो ये आंदोलन करूँगा, ये हड़ताल करूँगा, तो ये सब नहीं। प्रशांत हैं उद्धव जी की कोई मांग नहीं है, संतुष्ट हैं। और बृहस्पति प्राक्तनियम, और बृहस्पति के शिष्य देवताओं के गुरु बृहस्पति, और उनका शिष्य अगर कोई व्यक्ति बन जाए तो वो देवताओं के धरातल का बन गया, तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। बृहस्पति किसी को अपना शिष्य थोड़ी बनाएंगे, देवताओं अगर देवताओं के गुरु हैं तो वे किसी मनुष्य को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। लेकिन उद्धव जी को अपना शिष्य बनाया, है ना। तो ये बहुत विशेष योग्यता है, बृहस्पति के शिष्य हैं। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो प्रभुपाद ही बता रहे हैं कि एक पीढ़ी ऊपर के हैं। अतएव सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान रोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। अब प्रभुपाद एक बात मुझे बता रहे हैं कि विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, जबकि विदुर जी को पता है कृष्ण का जो परिवार है तो वो नहीं रहा इस पृथ्वी में, नहीं रहा और कृष्ण भी इस लोक से जा चुके हैं, लेकिन तो अभी उद्धव जी पूछ रहे हैं, नहीं क्षमा करें, विदुर जी पूछ रहे हैं, विदुर जी पूछ रहे हैं उद्धव जी से, है ना, तो क्यों पूछ रहे हैं, इनको पता है फिर क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि जहाँ बहुत प्रेम होता है तो वहाँ व्यक्ति उसकी बार बार चर्चा करना चाहता है और बार बार सुनना चाहता है उसी के विषय में। और विदुर जी जो है, चूँकि कृष्ण के बहुत प्रेमी हैं, तो कृष्ण के विषय में, कृष्ण के परिवार के विषय में वे पूछ रहे हैं, उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि क्या समाचार है। जो बातें वो जानते हैं उनको भी वो सुनना चाहते हैं, और जो नहीं जानते हैं कुछ और भी समाचार होगा तो वो जानना चाहते हैं। तो विदुर जी के अंदर ये इच्छा है, बार बार सुनने की इच्छा है, ये प्रेम का लक्षण है। समाचार पत्र को एक बार पढ़ते हैं तो आप फेंक देते हैं, कोई उपन्यास आप पढ़ते हैं तो फेंक देते हैं, दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना। लेकिन जहाँ प्रेम होता है तो उस विषय में बार बार सुनना, बार बार पूछना, तो ये जो है मतलब है, जैसे गीता में भगवान ने बताया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यं विदारमंदिता। तो बोधयंता परस्परम, तो एक दूसरे को बोध कराते हैं परस्पर, कथयंतश्च माम, और फिर एक दूसरे को बताते हैं मेरे विषय में, तुष्यंते चरमंदिता। तो जितने बार उन बातों को वो सुनते हैं सुनाते हैं उतना अधिक और तुष्ट होते हैं और आनंदित होते हैं। तो ये बुद्ध जी का ये लक्षण है, महाभागवत हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये जिज्ञासा अजीब लगती है किंतु श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये समाचार विदुर के लिए आघात था, इसीलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यावहारिक नहीं थी। हाँ, व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में आप किसी के बारे में ऐसी जिज्ञासा नहीं करते हैं। आपको पता है किसी व्यक्ति का मनुष्य के पास हो गया है ना, तो फिर उसके विषय में आप पहले से बता देंगे, भाई ऐसा है, हमने सुना है ना, तो फिर कुछ पुरानी चर्चा होगी। इस समय का समाचार तो नहीं पूछेंगे, क्या समाचार इस संसार में जब नहीं रहे तो आप फिर कैसे पूछेंगे उनका क्या समाचार, है ना। तो व्यवहारिक तो नहीं है विदुर जी पूछ रहे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि उनके मन में जो है बहुत उत्कंठा है, बहुत प्रेम है, इसलिए कृष्ण के विषय में समाचार वो पूछना चाहते हैं। जैसे कि यदि बिल्कुल ताज़ा हो, बिल्कुल नया हो, ऐसा पूछना चाहते हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया है, तो यहाँ पर जो चर्चा करने का विषय है वो ये है कि उद्धव जी भगवान के अनुचर हैं। उद्धव जी को ये जो पद मिला, भगवान के मंत्री बनने का जो पद मिला है, वो कैसे मिला है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त की, बृहस्पति के द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त की। तो श्रीमद् भागवत का जो तत्व है वो उद्धव जी नहीं समझ सके। जब बृहस्पति से उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त की शिष्य के रूप में, तो श्रीमद् भागवत का जो रहस्य है उद्धव जी नहीं समझ सके, लेकिन परिणाम उनको प्राप्त हुआ। और परिणाम क्या प्राप्त हुआ कि कृष्ण के अनुचर बन गए, कृष्ण के मंत्री बन गए। और कृष्ण कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो उद्धव जी से हमेशा सुझाव पूछते हैं कि तुम्हारा विचार क्या है, तो उद्धव जी को इतना सम्मान देते हैं। उद्धव जी का जो है कहीं वर्णन नहीं आता कि वो युद्ध में भाग लेते हैं, युद्ध में कभी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन युद्ध के संबंध में और भी किसी संबंध में अगर कोई मंत्रणा होती है तो भगवान को देते हैं। युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ युद्ध नहीं करना है, और क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब विषय में जो है उद्धव जी से परामर्श लेते हैं भगवान कृष्ण। तो इस विषय में भागवत महात्म्य में काफ़ी बातें मिलती हैं जिनको कि मैं सुनाना चाहता हूँ। ये स्कंद पुराण का भागवत महात्म्य है। स्कंद पुराण के अंदर सूत जी सुना रहे हैं और जो ऋषि लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि परीक्षित और बैजनाथ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तो ये घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए और अर्जुन भगवान कृष्ण की पत्नियों को अपने साथ लाए, द्वारका से हस्तिनापुर लाए, और युधिष्ठिर महाराज को जब समाचार मिला कि भगवान कृष्ण चले गए अपने धाम में तो अब वो भी नहीं रहना चाहते इस पृथ्वी में, तो बैजनाथ को मथुरा का राजा बना दिया। द्वारका तो डूब चुकी है पानी में, समुद्र में, तो बैजनाथ को मथुरा का राजा बना दिया। बैजनाथ कौन है? कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हैं बैजनाथ, कृष्ण के प्रपौत्र हैं। तो उनको मथुरा का राजा बना दिया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और वो भी अपने चले गए, इस संसार को छोड़ करके चले गए। तो परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा हैं तो पूरा सब कुछ फला फूला है क्योंकि पांडवों ने जिस तरह से उसको चलाया था, लेकिन मथुरा मंडल बिल्कुल जनशून्य है, वहाँ पर कुछ नहीं है, है ना। तो जब परीक्षित महाराज जब आए बैजनाथ से मिलने के लिए कि आपको कोई अगर समस्या हो तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, हालांकि परीक्षित महाराज बैजनाथ के पिता जैसे हैं, लेकिन चूंकि कृष्ण के पुत्र हैं बैजनाथ हैं तो परीक्षित महाराज के हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान है, कृष्ण के वंश में बैजनाथ। तो बैजनाथ ने बताया कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई प्रजा ही नहीं दिखाई पड़ रही, सब प्रजा कहाँ चली गई ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर शांडिल्य मुनि को बुलाया और शांडिल्य मुनि ने फिर बताया कि यहाँ जितने भी प्रजा थी ये ब्रजमंडल में या मथुरा मंडल में जितनी प्रजा थी वो अब जो है भगवान कृष्ण जब चले गए तो अब वो अदृश्य हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सब लीलाएँ तो हो रही हैं भगवान की, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो लोग आँखों से ओझल हो गए हैं। और इसके लिए शांडिल्य मुनि ने परीक्षित महाराज को आज्ञा दी कि यहाँ पर आप बसाइए प्रजा को। तो परीक्षित महाराज ने प्रजा को बसाया। तो ऋषियों ने पूछा कि परीक्षित बैजनाथ को आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों ने क्या क्या काम किया, उन दोनों मतलब कौन दोनों, परीक्षित महाराज और बैजनाथ ने। तो सूत जी बोले कि परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ यही है जो दिल्ली जहाँ हम लोग रहते हैं, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ से बुलाया और बसाया मथुरा में। इसके तक सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों को और प्राचीन वानरों को जो भगवान के बड़े प्रेमी थे बुलवाया और आदर योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से बैजनाथ ने क्रमशः उन सभी स्थानों को खोजा जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। तो बैजनाथ ने उन स्थानों को भी खोजा, शांडिल्य मुनि की कृपा से उनको स्फूर्ति होती थी कि यहाँ पर भगवान की ये लीला हुई। इस तरह से उन्होंने वो नामकरण किए, स्थानों के नामकरण किए भगवान की लीला के अनुसार। ये लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। जैसे जैसे भांडीरवन और भद्रवन, लोहवन है ना, वृंदावन, ये सब स्थानों के नामकरण किए भगवान की लीलाओं के अनुसार। राधा कुंड, श्याम कुंड है ना, ये सब नामकरण किए, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की और उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए। जैसे वेणु को है तो कृष्ण ने अपनी बंसी से कुआं बनाए, वेणु को है ना, इस तरह से कुंड भी बनवाए, यशोदा कुंड है ना, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड है ना, विशाखा कुंड, ऐसे कुंड भी बनवाए। कुंज और बगीचे लगवाए और देवताओं की भी स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवान के अर्चा विग्रह भी स्थापित किए। किसने? बैजनाथ ने। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा बैजनाथ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था, वे सदा भगवान के मधुर नाम और लीलाओं के चर्चा में संलग्न होकर के आनंद के समुद्र में डूबे रहते और सदा बैजनाथ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रीतम पति देव की चतुर्थ पटरानी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। भगवान की जो पत्नियां हैं, एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातु राम कालिंदी मुदताम वीक्ष प्रपच्छुर्गत मत्सराम। तो बिना किसी सौती अडाहे के कालिंदी से पूछ रही हैं कृष्ण की पत्नियां। तो भगवान कृष्ण नहीं हैं और उनकी पत्नियां कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रही हैं, लेकिन कालिंदी हरिबोल जमुना जी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, तो उनको डाहे सौती अडाहे होना चाहिए, लेकिन सौती अडाहे नहीं है। पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं वैसे तुम भी तो हो। हम तो उनकी बृह अग्नि में जली जा रही हैं, उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है, तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है कुछ बताओ। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, करुणा से हृदय द्रवित हो गया और यमुना जी बोली। यमुना जी ने कहा कि आत्मा में रमण करने के कारण श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। तो कृष्ण को आत्मा राम कहा जाता है, आत्मा का राधा रानी, कृष्ण की आत्मा है राधा रानी, तो राधा रानी में ही रमण करते हैं, इसलिए राधा रमण भी कहते हैं और आत्मा राम भी कहते हैं। तो आत्मा राम और राधा रमण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण की आत्मा कौन है? राधा रानी, तो राधा रानी से रमण करते हैं इसलिए आत्मा राम भी कहे जाते हैं और राधा रमण भी कहे जाते हैं। उनकी आत्मा है राधा जी, मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती हूँ, उनके सेवा का यह प्रभाव है कि विरह हमें अनुभव नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी रानियां हैं सबके सब श्री राधा जी की अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य संयोग है। श्री राधा के स्वरूप में विद्यमान जो श्री कृष्ण अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं, उन दोनों का प्रेम ही बंसी है और राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसीलिए वो कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहीं श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा। तुम लोगों का भी श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसीलिए व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले गए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीत हुई थी, वो भी वास्तविक विरह नहीं, विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तभी उस बात को समझ सकी। कालिंदी कह रही हैं कि जब कृष्ण चले गए नंदगांव से मथुरा तो गोपियां फिर है अग्नि में जल रही थी, तो उद्धव जी ने इस रहस्य को बताया तो वे उस ग्रह से मुक्त हो गई। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। उद्धव जी की आवश्यकता है, कालिंद जी कहते हैं उद्धव जी की आवश्यकता है आपको। तेनैव भवतीनां चेन् भवेदत्र समागमः तर्हि नित्यं सुतान्तेन विहारम् अपि लप्स्यते। तो सूद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए। किनके हृदय में लालसा है? कृष्ण की पत्नी होंगी हृदय में, जिससे अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। एवं मुक्ता सुता पत्न्या प्रसन्नां पुनरब्रुवन् उद्धवालोकनेनात्म प्रेष्ठ संगम लालसां। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, हे सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है क्योंकि तुम्हें कभी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता है। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अर्थ की सिद्धि हुई है उनकी अब हम लोग भी दासियां हैं, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी शीघ्र ही मिल जाए। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे श्री कृष्ण की 16 कलाओं का चिंतन करती उनसे कहने लगी। जब श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, सुन रहे सब लोग, क्या किसने कहा? किसने कहा, किससे कहा? उद्धव जी से कहा। जब कृष्ण अपने धाम जा रहे हैं हमने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपने साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासुओं को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि, साधन भूमि बद्रिकाश्रम और फल भूमि ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों से भगवान ने पहले उद्धव जी को दे दिया, किंतु वो फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे हो गई है, अब वो नहीं दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो तुम इसी स्थान में हो, उद्धव जी भी यहीं हैं, इन तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है, वहाँ की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का ही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण धूल उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी वहाँ गोपियों की चरण धूल लेने के लिए लता रूप में निवास करते हैं। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते, इसलिए अब तुम लोग बैजनाथ को साथ लेकर वहाँ जाओ, कुसुम सरोवर के पास ठहरो। कुसुम सरोवर देखा है कितने लोगों ने? काफ़ी लोगों ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं। कुसुम सरोवर भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा वेणु मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन और कथाओं के श्रवण और भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा उत्सव आरंभ करो। उत्सव स्वरूप हैं भगवान का, उत्सव स्वरूप है उद्धव जी, उत्सव आरंभ करो। वीणा वेणु मृदंग कीर्तन काव्यादि रस संगीत उत्सव आरब्धव्यो हरिरत लोकान समानाय। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा और वे भली भांति तुम लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर बैजनाथ और परीक्षित से सारी बातें कह सुनाई कि क्या करना है, सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बैजनाथ और श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वो सब कार्य आरंभ करवा दिया जो यमुना जी ने बताया था। क्या कार्य बताया था? उत्सव, श्री कृष्ण संकीर्तन उत्सव। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। श्री राधा जी और उनके प्रीतम श्री कृष्ण की वो लीला भूमि साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई। उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र ना जाती थी। तब सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। हरि वो उनका शरीर श्याम वर्ण था। कैसा है? श्याम वर्ण था। उनका उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उद्धव जी कृष्ण के उतारे हुए कपड़े हमेशा पहनते हैं, तो पीतांबर जो है कृष्ण का पीतांबर, तो कृष्ण जो त्याग देते हैं जिन वस्त्रों को तो वो अपने धारण करते हैं, तो पीतांबर शोभा जा पा रहा। गले में बनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे, सब कृष्ण की प्रसादी माला, गुंजा माला बनमाला धारण किए हुए और मुख से बारंबार श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा हुई कई गुना बढ़ गई, जैसे चांदनी छिटकने से शोभा बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना आई और होश हुआ, उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर उनकी पूजा करने लगे। सूर्य जी कहते हैं उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। किसने हृदय से लगाया? उद्धव जी ने। किसको? परीक्षित को। राजन तुम धन्य हो, उद्धव जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। धन्य हो सी राजन कृष्ण के भक्त्या पूर्ण हो सी नित्यदा यस त्वम निमग्न चित्तोसी कृष्ण संकीर्तनोत्सवे। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है, तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप है, क्यों ना हो श्री कृष्ण ही तुम्हें शरीर प्रदान किया है, कृष्ण ही तुम्हें शरीर प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो वज्रनाभ हैं इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है, उसी के प्रभाव से अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु अब वो समय तो बीत गया इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बताया जा रहा है। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वो श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त कर सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। हरि बोल। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। सुन रहे? भारत मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयम पापे पराधीन आत्मघातस्तुते कृताम। जिन बलभागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है उन्होंने अपने पिता माता और पत्नी तीनों ही इनके कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। हरि बोल, सुन रहे हो? तो आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? आंखें नहीं बंद करना है, आंखें बंद करते हो फिर कान भी बंद हो जाते हैं, आंखें नहीं बंद करना है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है, क्षत्रियों को शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग होते हैं। स्त्रियों और अंतज अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन ना करेगा? कौन कह रहे हैं? मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, आपके पास मोबाइल नंबर बंद कर दी, मैंने बंद कर दिया। हाँ, कौन कह रहे हैं? सुन नहीं रहे? कौन सुन रहा है? किसने सुना? कौन कह रहे हैं? हैं? उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं। तो काफ़ी, तो फिर उद्धव जी ये बताते हैं, बृहस्पति काफ़ी इसमें जो है वर्णन मिलता है। अंत में फिर उद्धव जी यही कहते हैं कि मैं जो है श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा यहाँ पर, और इन कृष्ण की पत्नियों को भी कृष्ण का प्रकाश प्राप्त कराऊंगा, और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं इन सबको कृष्ण का प्रकाश प्राप्त होगा और कृष्ण के लीला में ये प्रवेश करेंगे। ये कहते हैं उद्धव जी ने कहा, और परीक्षित से कहा कि आप जो है कलियुग को जीतने के लिए आप जो है दिग्विजय के लिए जाइए, है ना। तो परीक्षित फिर जो है बड़े चिंतित हो जाते हैं कि फिर मुझे तो कथा सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर उद्धव जी कहते हैं कि आपको जो है आपको सबसे ज़्यादा अधिकार है कथा सुनने का, इसलिए आप चिंता मत करिए, आपको जो है सुखदेव गोस्वामी सही समय पर कथा सुनाएंगे श्रीमद् भागवत की, तो आप चिंता मत करिए। तो परीक्षित जो है दिग्विजय के लिए जाते हैं, कलयुग ना आने पाए उस स्थान में जहाँ उद्धव जी कथा सुनाएंगे और एक महीने के लिए कथा सुनाएंगे, है ना। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग के ऊपर जो है विजय प्राप्त की और कलयुग को जो है सीमित कर दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं कि जहाँ चार स्थान हैं इनके अलावा तुम और किसी स्थान में नहीं रहना। तो परीक्षित महाराज ने इसी ये सोच करके प्रतिबंध लगाया कि जो कथा चल रही है ना, तो वहाँ पर ये कलयुग नहीं जाएगा। और ध्रुव जी ने कहा था कलयुग अगर आएगा तो सब उड़ के चले जाएंगे, उनको अपने घर की याद आएगी और चले जाएंगे, और एक महीने तक मैं कथा सुनाऊंगा और इन सबको कृष्ण की लीला में प्रवेश कराऊंगा। इस प्रकार से उद्धव जी ने जो है कृष्ण की लीला में कृष्ण की पत्नियों को प्रवेश कराया, सब लोग जो है उस समय क्या हो गए, अदृश्य हो गए, है ना। तो ये घटना है, इस तरह से हमने आपको कुछ सुनाई। सामने घड़ी अच्छा ये है, दो घड़ी, हाँ अभी समय है हमारे पास में, ठीक है। तभी आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है या मैं? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। एक ऐसा प्रश्न है, मैं चाहता था कि कोई प्रश्न करे क्योंकि जो कोई सुनता है फिर मंथन करता है तभी तो प्रश्न होता है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबने सुना? नहीं सुना? सुन लिया? नहीं सुना? इनका प्रश्न है कि जब अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को लाए तो कृष्ण की पत्नियों का तो अपहरण हो गया था। कृष्ण की जितनी पत्नियां थीं उनमें से कुछ देवांगनाएं थीं स्वर्ग की, तो केवल उनका अपहरण हुआ था। जिन स्वर्ग की देवांगनाओं ने अष्टावक्र मुनि की चाल को देख करके, आठ स्थानों से टेढ़ा शरीर है और जब चलते तो बहुत अजीब लगता था शरीर, तो उनकी चाल को देख करके हंसी थी, तो अष्टावक्र मुनि ने साथ दिया था कि मेरे ही जैसे कुरूप व्यक्ति जो है तुम्हारा अपहरण करेंगे। तो जब अष्टावक्र मुनि को उन्होंने प्रसन्न किया तो अष्टावक्र मुनि बोले कि मेरा साप तो बदल नहीं सकता है, लेकिन हाँ तुम्हें वरदान देता हूँ कि भगवान कृष्ण की तुम लोग पत्नियाँ बनो, है ना। अब कृष्ण की पत्नियों का अब अष्टावक्र मुनि के हिसाब से वो भी जो है मतलब घटना होनी है, लेकिन कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कौन कर सकता है कृष्ण के अलावा? तो कृष्ण ने ही ये जो कोल भील थे उनका रूप धारण किया था कुरूप, और कृष्ण के अपनी ही पत्नियों का अपहरण किया था, लेकिन अर्जुन तो नहीं समझ सकते, तो उनके जो है उनको जो है दिव्यास्त्र भी याद नहीं आ रहे हैं, उनके जो है जो अक्षय तरकस थे वो बाणों से एकदम खाली हो गए हैं, उनको कुछ है, अब उनके पास कुछ नहीं रहा, तो अर्जुन जो है रक्षा नहीं कर सके और कृष्ण की पत्नियों का जो है वो अपहरण करके ले गए, है ना। लेकिन वास्तव में कृष्ण ने ही उतने सब रूप धारण किए थे जितनी उनकी पत्नियाँ थीं जो स्वर्ग की देवांगनाएँ थीं, है ना, और कृष्ण ही ऐसी अपहरण की लीला की थी, है ना। लेकिन बाकी जो शेष पत्नियाँ थीं हैं जो कि और अलावा उनके अलावा जो दूसरी स्त्रियाँ थीं तो उनको लेकर के आए अर्जुन, है ना। तो वो जो है हस्तिनापुर में पांडवों के संरक्षण में थी, फिर पांडव लोग जो है इस पृथ्वी को त्याग करके चले गए तो बैजनाथ के संरक्षण में मथुरा में छोड़ गए। तो ये बताया कि वो जो है बहुत भाग्यशाली, वो जो है कृष्ण की पत्नी बहुत भाग्यशाली थी जो कि राधा रानी की सेवा में आ गई और ब्रज की लीला में जिनको प्रवेश प्राप्त हुआ। हाँ जी, अच्छा पहले आप, हाँ
भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए हैं तो उद्धव जी वहाँ रहते थे मथुरा में, उद्धव जी की उम्र कोई 11-12 वर्ष रही होगी, तो उद्धव जी ने फिर दशरथ देव का शिष्य कब ग्रहण किया था?
हाँ, ये प्रश्न मेरा भी है, मुझे भी ये घटना जो है अभी तक मिली नहीं कहीं कि कैसे अवसर मिला। उद्धव जी स्वर्ग में गए बृहस्पति से विद्या सीखने के लिए या बृहस्पति आए पृथ्वी में, तो ये जो घटना है अभी तक अज्ञात है मुझे। ये बताया जाता है कि उन्होंने जो है बृहस्पति से श्रीमद् भागवत प्राप्त किया, परंपरा है इस तरह की, लेकिन बृहस्पति कैसे आए वो घटना अभी तक मुझे भी नहीं मिली है कि कैसे सब घटनाक्रम कैसे बना। ठीक है, और कोई? हाँ जी, जोर से बोलो, जोर से।
जो पत्नियां भगवान की इस प्रसंग में वृंदावन आई हैं उसमें जो प्राइमरी एट पत्नियां थीं
नहीं, वो जो पत्नियां थीं तो उन्होंने शरीर त्याग दिया, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया या अपने शरीर से ही वो चली गई द्वारका धाम। तो भगवान जो द्वारका में जो निवासी थे द्वारका के, द्वारका लीला में थे तो द्वारका लीला में प्रवेश कर गए। ठीक है ना, तो गोलोक धाम में एक हिस्सा जो है द्वारका भी है तो द्वारका की लीला में प्रवेश कर गए, तो वो कृष्ण की पत्नियाँ जो है द्वारका में प्रवेश कर गई। ठीक है ना, इस शरीर को छोड़ करके गई या शरीर के साथ ही गई वो अलग बात है, वो द्वारका लीला में चले गई। हाँ, वो क्षमा करना, वो 16,000 अनुवाद में लिखा था तो मैंने पढ़ दिया, ये श्लोक में नहीं लिखा है 16,000, वो श्लोक अनुवाद में 16,000 लिखा था तो मैंने पढ़ दिया, फिर मैंने भी श्लोक जब पढ़ा तो मैंने देखा श्लोक में नहीं है 16,000, 16,108 जो पत्नियाँ थीं तो वो नहीं है, कुछ पत्नियाँ जो है जो तो शेष बची थी अर्जुन के साथ में वो आई। बहुत ध्यान से सुना इसलिए ऐसे प्रश्न किए हैं, है तो कोई ऐसे प्रश्न तभी करता है जब अच्छी तरह ध्यान से सुनता। हाँ जी, भगवान के अगर कोई कुछ भक्त हैं जो भगवान की लीला से ही आए, भगवान की पत्नी आया कुछ है भगवान की लीला में पहले थे और फिर आए इस पृथ्वी में, तो भगवान की वो भी लीला ही है कि भगवान के आदेश से वो आए, और कुछ ऐसी पत्नियां हैं जिन्होंने ऐसे सुकृत किए, ऐसे उन्होंने भक्ति के कार्य किए कि भगवान की पत्नी बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो फिर वे भी भगवान की लीला में प्रवेश कर गए नित्य लीला में। ठीक है ना, आपका प्रश्न क्या है? यहाँ ये जो है ब्रज लीला, ये ब्रज लीला में प्रवेश कराना ये मतलब विशेष सौभाग्य है। द्वारका लीला में भी कुछ हैं भगवान के संगी हैं जो द्वारका लीला में प्रवेश करते हैं, कुछ भगवान के संगी मथुरा लीला में हैं मथुरा की लीला में प्रवेश करते हैं, है ना। लेकिन कुछ संगी हैं जो ब्रज लीला में प्रवेश करते हैं तो वो कुछ विशेष सौभाग्य हैं उनका। राधा रानी, हाँ राधा रानी की संगिनी, राधा रानी की सेवा में आ गई, वे विशेष स्वभाव। ठीक है, हाँ जी।
भागवत पाठ सुनने मात्र से मतलब ब्रजलीला में प्रवेश
कर, भागवत पाठ सुनने मात्र से, भागवत पाठ सुनने मात्र से, यहाँ पर सुनने मात्र का मतलब ये भी है कि उद्धव जी सुनाएंगे, उद्धव जी सुनाएंगे एक महीने तक सुनाएंगे, तो सुनने मात्र का मतलब कि वो सुनते ही रहे एक महीने तक, उन्होंने सुना
जितना हुआ होगा उतना कि पूरा हो गया एक महीने,
तो एक महीने में उन्होंने पूरा किया श्रीमद् भागवत। ठीक है ना, तो सुनने मात्र का मतलब यह है कि आप सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, नित्यम भागवत सेवा। आप कितने समय में जो है मतलब आपको सिद्धि प्राप्त होगी वो अलग बात है, सुनने मात्र का मतलब ये नहीं कि एक बार सुनने मात्र, इन्हें कहा कि एक बार सुनने मात्र, सुनने मात्र का मतलब है कि सुनते ही रहो। अगर आप सुनने में ही लगे रहते हैं तो किसी भी प्रकार की भक्ति, एक प्रकार की भी भक्ति आप 24 घंटे करते हैं तो वो श्रवण मात्र कहलाता है। परीक्षित महाराज ने श्रवण मात्र से भगवान का धाम प्राप्त कर लिया, परीक्षित महाराज ने तो श्रवण मात्र मतलब 7 दिन तक उन्होंने बिना खाए पिए और बिना सोए सुना, तो उसको कहते सुनने मात्र से कि केवल सुना है, सुनना है। तो उसमें उन्होंने प्रश्न भी पूछे, मनन भी किया, मंथन भी किया, प्रश्न भी किए, तो सुनने मात्र का ये मतलब नहीं है कि आप सुन रहे हैं सो रहे हैं, होंगे सुनने मात्र से हो जाएगा सब, सुनते जा रहे हैं सोते जा रहे हैं तो वो सुनना मात्र नहीं कहलाता है, उसमें फिर सुनना भी है सोना भी है सब मिक्स हो गया ना, है ना। हाँ जी, चलो पहले आप मान
भागवतम के बारे में फर्स्ट के अंदर लिखा है कि कृष्ण सुधाम होते धर्म ज्ञान है, तो कलौश में कृष्ण के जाने के बाद जब वो धर्म ज्ञान के साथ चले गए तो भागवत युद्ध सुधाम जो है युद्ध हुआ युद्ध हुआ, और उद्धव जी कह रहे हैं तुरंत बाद ही कृष्ण भगवान कृष्ण के जाने के बाद भागवत का सेवन करना चाहिए, तो फिर क्या उद्धव जी और भगवान कृष्ण के जाने के बीच में चर्चा हो रही है?
बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न। जब विचार करते हैं तो फिर मंथन करते हैं तो फिर प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। वास्तव में जो श्रीमद् भागवत है तो ये स्वर्ग में तो पहले से है, उद्धव जी ने जो प्राप्त किया श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी से प्राप्त किया, तो वे स्वर्ग के देवताओं के गुरु हैं, तो वहाँ से प्राप्त किया है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत इस पृथ्वी में भगवान कृष्ण के जाने के बाद जो प्रकट हुआ उसका इतिहास अलग है। व्यास देव चिंतित हैं कलयुग के लोगों का जो है, मैंने मतलब पूरा उपाय नहीं बनाया है कि कैसे उनका उद्धार होगा, जबकि वेद, 4 वेद की रचना कर दी है और महाभारत की रचना कर दी, तब नारद जी उनको आदेश देते हैं कि आप शुद्ध भक्ति का वर्णन कीजिए, तो फिर व्यास जी ने समाधि में जो है श्रीमद् भागवत की रचना की है ना। तो ये भागवत जो है जो सुख और परीक्षित का संवाद है, अब यही भागवत इस पृथ्वी में भागवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 18,000 श्लोकों का है भागवत, स्वर्ग में जो भागवत है वो 100 करोड़ श्लोकों का पहले से ही, 100 करोड़ श्लोकों का है भागवत, ठीक है। और कोई हो गया, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, गौ नताई की जय। हरि बोल।